एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। जैसे हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे। मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें तेरे वचन के द्वारा विशेष रूप से आशीष दे और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करे, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है अनुग्रह का पुरस्कार। हम मत्ती 19:16-30 में पाते हैं कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। यहूदियों ने ईश्वर की मुफ्त कृपा की सच्चाई को लगभग नज़रअंदाज कर दिया था। रबियों ने सिखाया कि ईश्वर की कृपा अर्जित की जानी चाहिए। धर्मी लोगों का इनाम वे अपने कामों से पाने की उम्मीद करते थे। इस प्रकार उनकी पूजा लालची भावना से प्रेरित थी। इस भावना से मसीह के शिष्य भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, और उद्धारकर्ता ने उन्हें उनकी गलती दिखाने का हर अवसर तलाशा। मजदूरों का दृष्टांत देने से ठीक पहले एक घटना घटी जिसने उनके लिए सही सिद्धांत प्रस्तुत करने का रास्ता खोल दिया। जब वह रास्ते से जा रहा था तो एक युवक शासक दौड़ता हुआ उसके पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसे आदरपूर्वक सलाम किया। उसने कहा, हे अच्छे गुरु, मैं कौन सा अच्छा काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले? शासक ने मसीह को केवल एक सम्मानित रबी के रूप में संबोधित किया था, उसमें परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचाना। उद्धारकर्ता ने कहा, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय एक के, वह है परमेश्वर। तुम मुझे किस आधार पर अच्छा कहते हो? अच्छा, ईश्वर ही एकमात्र अच्छा है। यदि आप मुझे इस रूप में पहचानते हैं तो आपको मुझे उनके पुत्र और प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का चरित्र उसकी व्यवस्था में व्यक्त होता है, और यदि आप परमेश्वर के साथ सामंजस्य में रहना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था के सिद्धांत आपके हर कार्य का आधार होने चाहिए। मसीह व्यवस्था के दावों को कम नहीं करता, स्पष्ट भाषा में वह इसे अनंत जीवन की शर्त के रूप में प्रस्तुत करता है, वही शर्त जो आदम से उसके पतन से पहले अपेक्षित थी। प्रभु अब आत्मा से उतनी ही अपेक्षा करता है जितनी उसने स्वर्ग में मनुष्य से की थी, पूर्ण आज्ञाकारिता, निष्कलंक धार्मिकता। अनुग्रह की वाचा के अंतर्गत व्यवस्था उतनी ही व्यापक है जितनी अदन में की गई आवश्यकता, परमेश्वर के कानून के साथ सामंजस्य, जो पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छा है। जो अपेक्षा प्रभु परमेश्वर आदम से अदनबारी में पाप के पूर्व करता था, वही अपेक्षा, वही आशा आज मनुष्य जाति से परमेश्वर करता है। आज्ञाओं का पालन करो शब्दों पर युवक ने उत्तर दिया, कौन सी? उसने सोचा कि कुछ औपचारिक उपदेशों का मतलब था, लेकिन मसीह सिनाई से दिए गए कानून के बारे में बात कर रहे थे। उसने 10 आज्ञाओं की दूसरी तालिका से कई आज्ञाओं का उल्लेख किया, फिर उन सभी को उपदेश में संक्षिप्त किया, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेगा। तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ये सब बातें मैंने अपनी युवा अवस्था से ही मानी है, अब मुझे क्या कमी है? कानून के बारे में उसकी धारणा बाहरी और सतही थी। मानवीय मानदंड से देखा जाए तो उसने एक बेदाग चरित्र बनाए रखा था। उसका बाहरी जीवन काफी हद तक दोष मुक्त था। उसने वास्तव में सोचा कि उसकी आज्ञाकारिता में कोई दोष नहीं था। फिर भी उसे एक गुप्त भय था कि उसकी आत्मा और ईश्वर के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। इसने सवाल को जन्म दिया, अब मुझे क्या कमी है? मसीह ने कहा, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर गरीबों को दे दो और तुम्हें धन मिलेगा, स्वर्ग में है, और आकर मेरे पीछे हो ले। जा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बेचकर गरीबों को दे दे और तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन होगा, उसके बाद आओ और मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान युवक धनी व्यक्ति को कहा था, परंतु वह जवान यह वचन सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। स्वार्थ से प्रेम करने वाला व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है। यीशु ने इस बात को उस युवक को बताना चाहा और उसने उसे एक परीक्षा दी जिससे उसके हृदय का स्वार्थ प्रकट हो सके। उसने उसे उसके चरित्र में मौजूद दाग दिखाया। युवक को अब और ज्ञान की चाह नहीं थी। उसने अपनी आत्मा में एक मूर्ति संजो रखी थी, संसार ही उसका ईश्वर था। उसने आज्ञाओं का पालन करने का दावा किया, लेकिन वह उस सिद्धांत से वंचित था जो उन सभी की आत्मा और जीवन है। उसके पास ईश्वर या मनुष्य के लिए सच्चा प्रेम नहीं था। यह कमी हर उस चीज की कमी थी जो उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाती। स्वार्थ और सांसारिक लाभ के प्रति अपने प्रेम में वह स्वर्ग के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य से बाहर था। जब यह युवा शासक यीशु के पास आया तो उसकी ईमानदारी ने उधारकर्ता का दिल जीत लिया। उसने उसे देखकर उससे प्रेम किया। इस युवक में उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो धार्मिकता के प्रचारक के रूप में सेवा कर सकता था। वह इस प्रतिभाशाली और महान युवक को उतनी ही तत्परता से स्वीकार करता जितनी तत्परता से उसने उन गरीब मछुआरों को स्वीकार किया जो उसके पीछे चले। अगर उस युवक ने अपनी योग्यता को आत्माओं को बचाने के काम में लगाया होता तो वह मसीह के लिए एक मेहनती और सफल मजदूर बन सकता था, लेकिन पहले उसे शिष्यत्व की शर्तों को स्वीकार करना होगा। उसे खुद को बिना किसी शर्त के परमेश्वर को समर्पित करना होगा। उद्धारकर्ता के आह्वान पर यूहन्ना, पतरस, मत्ती और उनके साथी सबको छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम पाते हैं लूका 5:28 में युवा शासक से भी यही समर्पण अपेक्षित था, और इसमें मसीह ने उससे बड़ा बलिदान नहीं मांगा जो उसने स्वयं किया था। वह धनी था, फिर भी तुम्हारे लिए वह निर्धन बन गया ताकि तुम उसके निर्धन होने से धनी बन जाओ। यीशु ने खुद उदाहरण दिया है। प्रभु यीशु मसीह जो धनी था स्वर्ग में, वह इस पृथ्वी पर आया आपको और मुझे बचाने के लिए। हम यह पढ़ते हैं प्रतिज्ञा 2 कुरिन्थियों 8:9 में, युवा व्यक्ति को केवल मसीह के मार्ग पर चलना था। मसीह ने युवक को देखा और उसकी आत्मा के लिए तरस गए। वह उसे लोगों को आशीर्वाद देने वाले संदेशवाहक के रूप में भेजना चाहते थे। जिस चीज के लिए उन्होंने उसे समर्पण करने के लिए कहा था, उसके बदले में मसीह ने उसे अपने साथ संगति का विशेष अधिकार दिया। मेरे पीछे आओ, उन्होंने कहा, मसीह ने कहा। इस विशेष अधिकार को पतरस, याकूब और यूहन्ना ने खुशी माना था। युवक ने खुद मसीह को प्रशंसा के साथ देखा। उसका दिल उद्धारकर्ता की ओर आकर्षित था, लेकिन वह उद्धारकर्ता के आत्म बलिदान के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने यीशु से पहले अपनी संपत्ति को चुना। वह अनंत जीवन चाहता था, लेकिन आत्मा में वह निस्वार्थ प्रेम प्राप्त नहीं करना चाहता था जो अकेला जीवन है, और एक दुखी दिल के साथ वह मसीह से दूर हो गया। जब वह युवक मुड़ा तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। इन शब्दों ने शिष्यों को चकित कर दिया। शिष्यों को सिखाया गया था कि वे धनवानों को स्वर्ग के प्रिय व्यक्तियों के रूप में देखें। संसारिक शक्ति और धन संपत्ति वे स्वयं मसीहा के राज्य में प्राप्त करने की आशा करते थे। यदि धनवान राज्य में प्रवेश करने में असफल हो जाते तो शेष मनुष्यों के लिए क्या आशा हो सकती थी। यीशु ने फिर उत्तर दिया और उनसे कहा, बच्चों, जो धन पर भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक ऊंट के लिए सुई के छेद से निकल जाना एक धनवान व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कहीं अधिक आसान है। और वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे स्वयं भी गंभीर चेतावनी में शामिल थे। उद्धारकर्ता के शब्दों के प्रकाश में शक्ति और धन के लिए उनकी अपनी गुप्त लालसा प्रकट हुई। खुद के लिए आशंकाओं के साथ उन्होंने कहा, तो फिर कौन बचाया जा सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक अमीर आदमी इस तरह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। उसका धन उसे प्रकाश में संतों की विरासत का कोई अधिकार नहीं देता। केवल मसीह की अनपेक्षित कृपा के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के शहर में प्रवेश पा सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कृपा के द्वारा ही कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज में अंदर जा सकता है। पवित्र आत्मा के ये शब्द गरीबों से कम अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों के लिए है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि कीमत देकर मोल लिए गए हो। पवित्र शास्त्र कहता है 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में, जब लोग इस पर विश्वास करते हैं तो उनकी संपत्ति एक अमानत के रूप में रखी जाएगी, जिसका उपयोग परमेश्वर के निर्देश अनुसार किया जाएगा, खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए और पीड़ित और गरीबों के आराम के लिए। मनुष्य के लिए यह असंभव है, क्योंकि उसका हृदय अपने संसारी खजाने से चिपका रहता है। जो आत्मा धन की सेवा में बंधी हुई है, वह मानवीय जरूरत की पुकार के प्रति बहरी है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। प्यारो, मसीह के अतुलनीय प्रेम को देखकर स्वार्थ हृदय पिघल जाएगा और वश में हो जाएगा। धनी व्यक्ति को जैसा कि साउल फरीसी ने किया था, यह कहने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो कुछ भी लाभ मेरे लिए था उन्हें मैंने मसीह के लिए हानि मांगना है। हाँ, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की उत्कृष्टता के लिए सब बातों को हानि मानता हूँ। यह हम पाते हैं और पढ़ते हैं फिलिपियों 3:7-8 में। तब वे किसी भी चीज को अपना नहीं समझेंगे, वे खुद को परमेश्वर की विविध कृपा के भंडारी और उसके लिए सभी मनुष्यों के सेवक मानने में प्रसन्न होंगे। प्यारो, हम परमेश्वर के राज में यदि प्रवेश कर पाएंगे तो वह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, उसे प्रेम करने के लिए कहता है और उससे उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें कहता है। उस धनी व्यक्ति यीशु मसीह का चेला बन सकता था, यीशु मसीह उससे बुलाया, लेकिन वह अपना धन को त्यागने के लिए तैयार नहीं था। उसको प्रभु यीशु मसीह बुलाया था कि वह उसके पीछे चले, उसके साथ रहे, लेकिन वह संसार को अधिक प्रेम किया। प्यारो, हमें प्रभु यीशु मसीह बुलाता है कि हम उसे प्रेम करें, उसके साथ रहे। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, दुनिया संसार के चीजों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे, उसको अपना सर्वश्रेष्ठ माने, उसके राह में चले और वह हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार करेगा। उसके साथ रहना सब कुछ से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह से यदि हम प्रेम करेंगे, उसके पीछे चलेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। पवित्र आत्मा आपको मदद करे और परमेश्वर का आशीष आप सबों के साथ रहे कि हम उसके राह में चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास फिर से आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हमें मदद कर कि हम तेरे राह में चल सके। हमें तेरा पवित्र आत्मा का दान दे ताकि हम तेरे प्रेम को समझ सके और तुझे अपनाए, तुझे सर्वश्रेष्ठ माने और दुनिया के चीजों को पीछे रख करके तेरे साथ चलने के लिए चुने। पवित्र आत्मा
Yeshu ke naam
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।